बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरे हिंदो पाक। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरे, इस दौरे में अंजाम पाने वाले मुज़ाकरात और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए अमेरिका की जानिब से सालिसी की पेशकश का जायजा लेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। या नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में मुलाहिज़ा फरमाया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी पहले हिंदुस्तान गए। वहाँ उन्होंने गुजरात में मुनक़िदा इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के बारे में तबादला ख्याल किया और आपसी लेन देन के कई मुआहदों पर भी उनके इस दौरे में दस्तखत किए गए। उनके इस दौरे का एक मकसद अमरीकी सदर बाराक ओबामा के मुजवजा दौरे हिंदुस्तान का जायजा लेना भी बताया गया। हिंदुस्तान का दौरा मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में जॉन कैरी ने दहशतगर्दी को अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मसला और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दोनों मुल्कों की मुश्तरका जंग करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अख्तलाफात दूर कराने के लिए अमरीका की सालिसी की तजवीज़ भी पेश की। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि दो मुल्कों के दरमियान अख्तलाफात दूर कराने में अमरीका की सालिसी पर कितना एतमाद किया जा सकता है। दहशतगर्दी के ताल्लुक से जॉन कैरी ने पाकिस्तान के इकदामात को काबिले तारीफ बताया है और दहशतगर्दी मुखालिफ जंग को अमरीका और पाकिस्तान की मुश्तरका जंग करार दिया है। इस बारे में भी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की राय मालूम करेंगे और इसी के साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि आज पाकिस्तान जिस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से दो चार है, उसमें अमरीका का क्या किरदार रहा है। हमारे आज के प्रोग्राम में दिल्ली स्टूडियो से हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक, इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सीआर शमसी और लंदन से बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर इनायतुल्ला अंद्रा भी हिस्सा लेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार डॉक्टर वैद प्रताप वैदक से, जो हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। जी वैदक साहब, आधा वर्ज है जनाब। अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी हिंदुस्तान आए, उन्होंने गुजरात इकतसादी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुजाकरात अंजाम दिए। आपके ख्याल में ये दौरा उनका कैसा रहा है? हिंदुस्तान के लिहाज से आप इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं? कितने फायदे में रहा है हिंदुस्तान के उनका ये दौरा?
हिंदुस्तान के लिहाज से ये दौरा बहुत कामयाब रहा। सबसे पहली बात तो ये कि बराक ओबामा साहब आएंगे तो तफसीली बातचीत हुई कि वो आएंगे तो किन किन समझौतों पर दस्तखत होंगे, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, अमेरिका और भारत को। और उससे भी ज़्यादा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज ने जॉन केरी साहब को ये बताया कि आतंकवाद, जो दहशतगर्दी है, वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। और इस मामले में अमेरिका अगर पाकिस्तान को समझाए, थोड़ी सी सिफारिश करे, उनको अच्छी सलाह दे, तो पाकिस्तान से भी दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। जो बात इंडिया सीधे सीधे पाकिस्तान को नहीं कह सकता है, वो घुमा फिरा कर अगर अमरीकियों के ज़रिए कह दी जाए तो उसका असर शायद ज़्यादा होगा। और इसीलिए आप देखें कि जॉन केरी ने बड़ी हिम्मत की कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरजमीन पे उन्होंने लश्कर तैयबा के लिए और जो दूसरे भी तंजीम हैं कि जो दहशतगर्दी को आगे बढ़ाती हैं, सबके ख़िलाफ़ बोला है। और उन्होंने एक तरह से ये भी कह दिया है कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में फ़र्क करना बंद करें, जो सारे लोग हैं जो तशद्दुद पसंद हैं उन सब को खारिज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जॉन केरी ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जॉन केरी के दो दो बार भारत आने के बाद और उनके चार चार काबीना मंत्रियों के, मिनिस्टरों के भारत आने की वजह से और अब ओबामा साहब के आने की वजह से पता नहीं क्या पाकिस्तान में इतनी तल्खी पैदा हो गई है कि दो बयान आए जिन पे मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ, एक तो सरताज अजीज साहब का और दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब का, कि हिंदुस्तान तालिबानों को उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। बताइए ये कैसी एक मजाकिया बातचीत है कि हिंदुस्तान तालिबान को उकसाएगा, तालिबान को मौका देगा, उनको प्रोत्साहित करेगा कि वो पाकिस्तान पे हमला करें। ऐसी मजाकिया बात वो क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि बराबर वो हिंदुस्तान से बातचीत करे, हिंदुस्तान को भी चाहिए, मैं अकेले पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान से बात करे। और इस मामले में हिंदुस्तान की जिम्मेदारी में पाकिस्तान से ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मुल्क है, इसकी जिम्मेदारी बड़ी है, ये अपने आप को बड़ा भाई कहता है, तो बड़े भाई की तरह कुछ दरियादिली दिखानी चाहिए। जो बीच में हुर्रियत के बहाने जो बातचीत को तोड़ा गया उसको मैं बिल्कुल बिल्कुल उसको रद्द करता हूँ, वो अच्छा काम नहीं था। वो जल्दबाजी में किसी गलत सलाह की वजह से ये काम हुआ कि जो दोनों मुल्कों के फॉरेन सेक्रेटरी मिलने वाले थे वो बातचीत टूट गई, वो बातचीत फिर से जुड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरताज अजीज साहब तो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ को भी सही सलाह देंगे, फौज को भी सही सलाह देंगे और बातचीत फिर शुरू करवाएंगे।
जी जी शुक्रिया वैदक साहब। और नाज़रीन अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार सी आर शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब, सबसे पहले तो हम जॉन कैरी के दौरे पाकिस्तान के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके नुक्ते निगाह से उनका ये दौरा कैसा रहा है, कितना कामयाब कहा जा सकता है, इसके बाद आएंगे हिंद पाक ताल्लुकात की तरफ।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी आपने अपने इब्तदाइये में भी बात की और अभी दिल्ली से भी मोहतरम फरमा रहे थे, बरे सगीर का ये जो जॉन कैरी साहब का दौरा था, यकीनन दिल्ली में और पाकिस्तान में उनके एजेंडे मुख्तलिफ थे। और हम समझते हैं कि जब से दहशतगर्दी की जंग 9/11 के बाद एक ज़माना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो बड़े गहरे होते थे, बड़ा रोमांस रहा है
जी।
और उसका एक वक्त हमने ये भी भुगता कि जब वो दोस्त से मास्टर बन गया तो इस पे बहुत से तहफ़ुज़ात भी सामने आए। लेकिन आज की नई दुनिया में हम समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से एक आलमी जंग में फ्रंट स्टेट का किरदार अदा किया है, उसमें अब तकाजे बदल रहे हैं। और जॉन कैरी साहब का जो हालिया दौरा है उसको मैं पूरी तरह, तो जो मतलूबा पाकिस्तान का जो मुकदमा है उस तरह तो कामयाब हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको जुज़वी तौर पर हम इस तरह कामयाबी देखते हैं कि अमेरिका ने पहली बार ये एक तस्लीम किया है और एक यकीन दिलाया है हमारी क़यादत को कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो मदाखलत हो रही है और जो जिस तरह मौलवी फजलुल्लाह को एक आलमी दहशतगर्दी की जो फहरिस्त है उसमें शामिल किया गया है पहली बार, और यकीनन वो पाकिस्तान को मतलूब है और पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी दहशतगर्दी की वाकयात हुए हैं उसमें मौलवी फजलुल्लाह का मुदयानी किरदार है। लेकिन यहाँ जो हम समझते हैं कि जो जॉन कैरी साहब की वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हुई, सरताज अजीज साहब भी मुलाकात हुई, और लेकिन जो अहम मुलाकात जो जनरल हेडक्वार्टर GHQ में हुई और वहाँ किसी अमेरिका की आला शख्सियत को बार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वहां खुलकर बातें हुई हैं, वहां जहां पाकिस्तान की जानब से बिल्कुल दो टोक अल्फाज में यह कहा गया है कि जो हालिया ऑपरेशन है, जो जंग है, वो बिल्कुल बिला तफरीक हो रही है, हमारे लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है, दहशतगर्द दहशतगर्द है। लेकिन साथ साथ वहां पाकिस्तान की जानब से शवाहिद के साथ कुछ ऐसे हकायक रखे गए हैं कि बलोचिस्तान में और हमारे कबायली इलाकों में और खासतौर पर जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके साथ साथ जो भारत के कौंसल खाने हैं उनकी मुदाखलत के जो शवाहिद जो हैं वो भी सामने रखे गए हैं। और जॉन कैरी साहब से ये दरख्वास्त की गई है कि ये जंग जो है ये एक इज्तमाही जंग है, और ये आलमी अमन की जंग है, ये उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती कि जब तक पाकिस्तान कुर्बानियां देता रहे लेकिन दूसरी जानब से जो है एक पेनिट्रेशन होती रहे और दहशतगर्दों को जिस तरह तहफ़ दिया जा रहा है। अब कुनड़ में बैठे हैं मौलवी फजलुल्लाह और पांच जो अभी अफगानिस्तान से हवाले करने की बात हुई है, तो एक अच्छी शुरुआत तो ज़रूर हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें भारत का बड़ा बुनियादी किरदार है कि ऐसे लम्हे में जब पाकिस्तान एक दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, 150 बच्चे जो है फूल वो शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, दुनिया ने देखा कि पहली बार फूलों के जनाजे उठे हैं, ऐसे मौके पर भी भारत की जानिब से उसकी तोपों के जो दाने थे वो खुले रहे हमारे सियालकोट बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिन रात एक इश्तियाल अंगेज जो है रवैया, तो हम समझते हैं कि ये समझ से बालातर है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, पाकिस्तानी क़यादत ने यह वाज़ह किया है के भारत के साथ। अब ये इसको थोड़ा सा इस तनाजर में देखने की ज़रूरत है कि जो मौजूदा हुक्मरान जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसने जो इंतखाबी मुहिम चलाई थी ये एक खित्ते में दोस्ती के हवाले से, पाक भारत तलुकात के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से उनका नारा था, जबकि मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब का जो नारा था वो एंटी मुस्लिम नारा था। और अब हम समझते हैं कि इसके बावजूद जो बर्फ़ पिघली थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तहफ़ुज़ात के बावजूद उस तकरीब में भी गए, मुबारकबाद भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, लेकिन लगता है कि दिल नहीं पसीजा भी। भारत एक बड़ा मुल्क है, यकीनन जिस तरह जान कैरी साहब वहाँ एक बड़ी बिजनेस की इजलास में शिरकत करके आए हैं, बान की मून वहाँ थे, जान कैरी साहब वहाँ थे, तो यकीनन हम समझते हैं कि तरक्की होनी चाहिए खित्ते में, लेकिन इस तरक्की के सम्राट जो हैं इस पूरे खित्ते को मिलने चाहिए, जहाँ जो गुर्बत जंग की वजह से और एक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से दो एटमी कुवतें जो हैं आमने सामने रहती हैं, तो वक्त आ गया है। हम समझते हैं कि जान कैरी साहब को बहुत सारी बातें खुलकर बातें हुई हैं और एक अच्छी शुरुआत भी हुई है, और हम समझते हैं कि ये दौरा जो है, जो जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो गुज़श्ता कुछ हफ्ते पहले दौरा किया था अमेरिका का, वो बड़ा कामयाब रहा था और बड़ी तफसीली और गलतफहमियां जो थी वो दूर हुई हैं, और हालिया दौरे से भी वो गलतफहमियां मज़ीद दूर हुई हैं, तो हम तवक्को रखते हैं। लेकिन यहाँ जो जान कैरी साहब के मुलाकातों के दौरान जो इत्तला आई हैं कि जब उनकी तवज्जो भारत की इस जारियत की जानब दिलाई गई और बलूचिस्तान में और ट्राइबल एरिया में जो शवायद मिले हैं पेनिट्रेशन के, तो इस पर अफसोस से कहना पड़ता है कि जान कैरी साहब की जो रवैया था या जो उनकी खामोशी थी, उनका ये कहना था कि दोनों मुल्क आपस में मामलात तय करें। भाई ये जो कश्मीर का मसला है ये आपस का नहीं है, ये एक आलमी ज़मीर का मसला है। एक 7 लाख फौजों के साए में और बंदूकों के साए में वहाँ लोग ज़िंदगी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये एक जमहूरी और आज़ादी की जंग थी जिसको एक बड़ी खूबसूरती से भारत ने दहशतगर्दी का नाम दे दिया, लेकिन हम समझते हैं कि माजी में जाने के बजाय, माजी को कुरीदने के बजाय नफ़रतें बढ़ी हैं, हमें इन नफ़रतों को अब ख़त्म करना है। और जो खित्ते का एक इज्तमाई मामला है दहशतगर्दी, दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो यहूदी भी हो सकता है, और आप दुनिया में ये वाक़यात देख रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो एक लहर उठी है, अब दाइश की बातें हो रही हैं, तो आलमी बरादरी को और ख़ास तौर पर अमेरिका को इस हवाले से ज़मीनी हकायक का दराक करते हुए, और ये कभी मुमकिन हो नहीं सकता कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें, बहुत खुशाइंद बात है कि जो अशरफ गनी साहब सदर आए हैं वो एक दानिशवर शख्सियत हैं, और उनका जो आना है और जो इब्तदाई रद्द अमल है वो अमन की तरफ एक इशारा है, लेकिन आपने देखा कि जब वो पाकिस्तान से वापस गए तो वहाँ भी एक बड़े धमाके से उनका इस्तकबाल हुआ। तो देखने की बात यह है कि जो दहशत गर्द हैं वो कुव्वतें, उनके पीछे कौन है, पसे पर्दा उनको वसाइल कौन मुहैया कर रहा है, उन तक ये जदीद असला कहाँ से आ रहा है, ये चीजें अब जो अमेरिका के पास वसाइल हैं उसको देखना भी चाहिए और दुनिया को बताना भी चाहिए। और खास तौर पे अफगानिस्तान जो हम समझते हैं कि 31 बरसों से खाना जंगी का शिकार है, अब लोगों का अमन की उनकी वो हक भी है, और उसके लिए मिलजुल कर हमें दोनों मुल्कों को इत्माद की जो इत्माद साजी है उसका जो फुकदान रहा है वो अल्लाह के फजल से अब दूर हो रहा है। तो हम समझते हैं कि जान कैरी साहब का ये जो दौरा है ये अभी हम इसका एक अच्छा कदम करार देते हैं, लेकिन अभी दोनों मुल्कों के दरमियान आगे बहुत से उलझाव भी हैं और बहुत से इत्माद की बहाली के रास्ते भी खुले हैं।
جی بہت بہت شکریہ, اور چلتے ہیں لندن جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی اندرابی صاحب, کیری کے دورے ہند و پاک کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے, مجموعی تجزیہ, ان کے اس دورے کا مقصد کیا رہا ہے, ہندوستان میں ان کے دورے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کے دورے کا مقصد کیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح یہ بات جو ہے پہلے بھی آئی ہے کہ ان کے یہ دورے جو ہیں انڈیا کا اور پاکستان کا, ان کی نویت الگ الگ ہے. انڈیا کے ساتھ جو امریکہ کا رشتہ ہے وہ اوور ویلمنگلی, یعنی اس میں غالب پہلو جو ہے, وہ غالب کنٹینٹ جو ہے وہ اسٹریٹجک ہے. اور اسٹریٹجک سے یہ مراد ہے کہ یہ جو استعماری ایک آرڈر ہے اس وقت دنیا میں جو کئی صدیوں سے بھی چل رہا ہے, اور اس وقت ایک نیو کلونیل یا پوسٹ کلونیل جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں, لیکن بہرحال ابھی زمام کار انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. یہ پہلے برطانیہ کے ہاتھ, پھر ابھی امریکہ کے ہاتھوں میں, جو دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور دنیا کے وسائل کو اپنے لیے اس کا استحصال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جو گلوبل آرڈر ہے, اس گلوبل آرڈر کی مینٹیننس کے لیے امریکہ انڈیا کو اس خطے میں بالا دست دیکھنا چاہتا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اس کے راستے میں نہیں آئے گا. امریکہ کی جو ہیجمنی ہے دنیا میں, انڈیا اس کے لیے معاون ثابت ہوگا. تو یہ لب لباب ہے انڈیا اور امریکہ کی ریلیشن شپ کا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو آبادی ہے, وہاں کا جو ایمرجنگ مڈل کلاس ہے, اس سے انڈیا ایک بہت ہی ایک اٹریکٹیو ایک منڈی بھی ایک منڈی کے طور پر سامنے آ رہا ہے. وہی وجہ ہے کہ جان کیری نے اپنا وزٹ گجرات سے شروع کیا جہاں پر تجارتی گفتگو ہوئی اور انویسٹمنٹ کا معاملہ ہوا. اور ابھی جو حکومت بھی انڈیا میں آ گئی ہے, اس حکومت کے لانے میں بہت زیادہ ہاتھ تھا نان ریزیڈنٹ انڈینز جو تھے امریکہ میں آباد جو انڈینز تھے. اور سارا مقصد مدعا یہ تھا کہ انڈیا میں جو ایک اکنامک ریفارم جس کو کہتے ہیں, اکنامک ریفارم کا یعنی اس کو تو نام تو اکنامک ریفارم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح بڑے بڑے جو یہاں دے اقامت جو کارپوریشنز ہیں ان کو آپ کیسے منڈی فراہم کریں, اصل مسئلہ یہی ہے. تو یہ سلسلہ جو ابھی کچھ وقت سے شروع ہوا ہے وہاں, تو اس میں تیزی لانے کے لیے اس وقت کی حکومت بہت ہی امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بارے میں بہت ہی ہیلپ فل ہوگی. اور اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی انڈیا میں اوپر کا جو ہاؤس ہے راجیہ سبھا, اس میں کچھ بلوں کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت تھی, لیکن انہوں نے آرڈیننسز کا راستہ اختیار کیا اور بہت ہی کچھ اہم بل جیسے انشورنس کا مسئلہ ہے, انشورنس میں فورن عمل دخل جو ہے, یہ انشورنس آپ مانیں یہ ایک سونے کی کان ہے انڈیا میں. یعنی اس طرح کے ایک بڑے ملک میں اگر انشورنس کو فورن کمپنیز کو اجازت دی جائے انشورنس سیکٹر میں, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس کو آرڈیننس کے ذریعے پیش کیا گیا, یعنی پاس کیا گیا, اس لیے کہ راجیہ سبھا میں کچھ وہ مزاحمت تھی. تو لہذا امریکہ کی جو اکنامک انٹرسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو پانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں, پروموٹ کرنے میں, وہ انڈیا کو بہت ہی ممد معاون سمجھتا ہے. اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. پاکستان کو امریکہ 47 کے بعد سے ہی یوز کر رہا ہے. پہلے کولڈ وار میں ایک فرنٹ سٹیٹ کے طور پر یوز کیا, اور اب بھی پاکستان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں اور میں ادب کے ساتھ اپنے ہمارے جو بھائی پاکستان اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, انہوں نے بالکل صحیح ذکر فرمایا کہ پہلے دوست پھر ماسٹر. لیکن میری یہ تو جنرل ایوب خان کی وہ کتاب جو ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس سے شاید انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ یہ ہمیشہ ماسٹر کا ہی رشتہ تھا. دیکھیں نا, दो ना बराबरों के दरमियान रिलेशन बिटवीन टू अनइक्वल्स वो कभी दोस्ती की नहीं हो सकती, वो कभी बराबर दो बराबरों के दरमियान, दो हमपल्ला पार्टियों के दरमियान नहीं हो सकती, वो तो होती ही है ऐसी। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि अमेरिका ने अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, ये सारी दहशतगर्दी 100% अमेरिका का तोहफा है, 100%। और इसमें इसको क्या यानी बदकिस्मती कहें आप या कुछ, इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के तई वो अमेरिका के मफादात को यानी उससे अमेरिका के मफादात को वो आगे जा रहे हैं, यानी उनको तकवियत मिल रही है, यानी इंडिया इस दहशतगर्दी को इंडिया को भी इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस दहशतगर्दी का रूट क्या है, ये अमेरिका की प्लांटेड है, लेकिन इंडिया इससे बहुत फायदा उठा रहा है। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बेसिक कश्मीर का मसला है, हमारे पाकिस्तान के दोस्त ने बहुत सही कहा कि उसको भी दहशतगर्दी के नजर कर दिया गया, अगरचि वो मुसलमा एक मसला है, अक्वामी मुत्तहदा की करारदाद है, उसमें अक्वामी आलम ने अपने हाथों से दस्तखत किए हैं उस पर कि कश्मीरियों को अपना सियासी मुस्तकबिल उसका फैसला करने के लिए रायशुमारी का मौका मिलना चाहिए, लेकिन इस सारी चीजों को दहशतगर्दी के नजर कर दिया गया। और मैं हमारे जो डॉक्टर वैदिक दिल्ली स्टूडियो में है, मैं इनका इससे पहले भी मैंने इनका सुना है, बहुत ही रिजनेबल बात करते हैं ये, मैं इनके लिए मैं इनको बताऊं कि ये कह रहे हैं कि तालिबान इंडिया तालिबान के जरिए पाकिस्तान पर हमला करवाना चाहता है, तो इनको इसमें कोई ताज्जुब लगा। मैं इनको बताऊं कि अभी ये बात जो है इन्हीं के नरेंद्र मोदी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने इंडिया में एक दानिशगाह में ये बात खुद कही। अब देखिए ये बहुत दिलचस्प बात है जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि तालिबान कौन है, तालिबान पाकिस्तान के देवबंदी स्कूलों से फारिग लड़के हैं और देवबंद हमारे यहां है इंडिया में है। उन्होंने ये बताया कि तालिबान पर पाकिस्तान से ज्यादा हमारा असर रसूख है, हम चाहें तो उनको कुछ भी करवा सकते हैं और उन्होंने किया, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान को इंडिया से मदद मिल रही है, तो ये एक नोन फैक्ट है। तो लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये दो रिश्ते जो हैं अलग अलग इनकी नवियत है, इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक नवियत और पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका अपने मफादात को बढ़ा रहा है। और ये जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान खुद भी इस बात से आगाह हो जाए और इस रिलेशन में जरा एक बेहतरी हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया अंद्राबी साहब। और नाजरीन यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर गुफ्तगु आगे बढ़ाएंगे। जी नाजरीन, अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी के दौरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगु हम कर रहे हैं। चलते हैं दिल्ली वैदक साहब की तरफ। वैदक साहब, जनाब आपने गुफ्तगु सीआर शमसी और डॉक्टर अंद्राबी दोनों की गुफ्तगु आपने मुलाहजा फरमाई। जॉन कैरी के दौरे के ताल्लुक से जो आपने अपनी गुफ्तगु में ये कहा कि हिंदुस्तान ने जॉन कैरी से ये कहा है कि वो पाकिस्तान को समझाए कि अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक खत्म कर दे, तो जहां तक इसका सवाल है तो पेशावर के सहने के बाद खुद नवाज शरीफ साहब ने वाजे तौर पर यह कहा है कि कोई तालिबान अच्छा और बुरा नहीं है, तालिबान दहशतगर्द है और सब दहशतगर्द है, ये तो अपनी जगह पर एक अलग बात है। लेकिन जहां तक अच्छे और बुरे तालिबान या अच्छे और बुरे दहशतगर्द की बात है, तो ये आपने जॉन कैरी से यह क्यों नहीं कहा कि अमरीका अच्छे और बुरे दहशतगर्द की तफरीक खत्म कर दे? इसलिए कि यह इस्तिलाह अमरीका से आई थी, दहशतगर्द दहशतगर्द होता है ना, अच्छा होता है ना, उसको मतलब अच्छा नहीं कहा जा सकता है, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द, अच्छा और बुरा दहशतगर्द ये तो अमेरिका ने तकसीम की थी, तो आपने खुद अमेरिका से ये मुतालबा क्यों ना किया कि दहशतगर्दों को अच्छे और बुरे दो कैटेगरी में तकसीम करना आप बंद कर दें ताकि दुनिया को दहशतगर्दी से निजात मिले?
ये आपने बहुत मेरे दिल की बात कह दी है
जी।
मैं तो ये बात बीसियों बरस से कह रहा हूँ कि तालिबान को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो वो अमेरिका ने किया है, मुजाहिदीन को तालिबान अमेरिका ने बनाया है, तालिबान को इंतहा पसंद अमेरिका ने बनाया है और अमेरिका की ही वजह है कि पाकिस्तान के दिमाग में भी ये शऊर भर दिया गया है कि तुम इंडिया के मुकाबिल हो। अभी हमारे मेहरबान दोस्त ने कहा कि दोनों मुल्कों में बहुत फ़र्क है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक काफ़ी मजबूत है, सियासी तौर पे बहुत ही पका हुआ मुल्क इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी काबिलियत से आगे बढ़े इसकी बजाय उसको एक नकली बैलेंस ऑफ पावर खड़ा किया, वो किसने किया? अमेरिका ने किया। तो अमेरिका का ये जो बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि दुर्गुण है, दोष है, ये गुनाह है अमेरिका का, ये अमेरिका को अब पता चल चुका है और हिंदुस्तान के लोगों ने इसे खूब कहा है, डट के कहा है। लेकिन अब आप देखें कि ओसामा बिन लादेन के बाद से अमेरिका की पॉलिसी में कुछ फेरबदल हुआ है। बीच में आपने सुना होगा कि जब केरी लुगार एक्ट आया तो अमेरिका ने कोशिश की कि वो ये तालिबान का फ़र्क ख़त्म करे और सारे आतंकवादियों को, सारे दहशतगर्दियों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से कहे। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को कभी भी अमेरिका ने दो टूक लफ्ज़ों में ये नहीं कहा कि हर तरह के तालिबान को ख़त्म करे। तो अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका खुद समझता है और केरी ने इस बात को पाकिस्तान में खुल के कहा है। लेकिन मुझे यही अफसोस है कि पाकिस्तान अब भी अमेरिका, पाकिस्तान पर अमेरिका अब भी कस के लगाम नहीं लगाने वाला है, वो पाकिस्तान को छोड़े रखेगा कि वो चाहे तो अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, इंडिया के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे, बस अमेरिका खुद परस्त है, अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की खुशी इसी बात में है कि कोई भी तालिबान ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए जो अमेरिका के खिलाफ हो। ये अमेरिका की जो खुद परस्ती है, जो स्वार्थीपना है, ये सबसे ज़्यादा हमारे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान का फ़ायदा इसी में है कि वो तशद्दुद को छोड़ दे, और तशद्दुद पाकिस्तान से तभी छूटेगी जब पाकिस्तान को ये एतबार हो जाए कि उसको बाहर से कोई नकली मदद नहीं मिलने वाली है, न चीन नकली मदद देने वाला है, न अमेरिका नकली मदद देने वाला है, वो अपने पाँव पर खड़ा रहेगा। अगर वो अपने पाँव पर खड़ा रहेगा तो सेहतमंद भी रहेगा, वो भारत से और अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते भी बना के रखेगा। अभी दोनों पड़ोसियों से वो रिश्ते खराब इसीलिए बना के रखता है कि अमेरिका उसकी पीठ ठोकता रहता है, और अमेरिका का ये काम है, हर जगह वो दहशतगर्दों की पीठ ठोकता है और फिर जब दहशतगर्द उस पर उल्टे पड़ते हैं तो वो चिल्लाता है। अमेरिका का ये जो निगेटिव रोल रहा है, ये सिर्फ हमारे खित्ते में ही नहीं रहा है, ये इराक में रहा है, ये ईरान में रहा है, ये सीरिया में रहा है, हर जगह अमेरिका दुधारी चाल चलता है। उसी का ये नतीजा है कि सारे मुल्कों में कोहराम मचा हुआ है। मैं समझता हूँ कि केरी साहब अब वहाँ से जो जाएंगे, ओबामा से बात करेंगे, और जब ओबामा दिल्ली आएंगे तो उनको हमारे रहनुमा लोग साफ साफ दो टूक शब्दों में कहेंगे कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल साफ बात करे कि या तो दहशतगर्दी आप बिल्कुल बंद कीजिए या हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। आप देखिए कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की डट के मदद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज लड़ रही है दहशतगर्दों से और बड़ी ईमानदारी से लड़ रही है। लेकिन अगर ये अब भी फ़र्क करती है दहशतगर्दों में, तो पाकिस्तान का भला इसी बात में होगा कि अमेरिका और चीन भी, मैं चीन से भी कहूँगा कि वो पाकिस्तान की एड बिल्कुल बंद कर दे। अगर एड बिल्कुल बंद कर दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो ये है कि ये फौजी अफसरों को तनख्वाह नहीं मिल सकती है, बड़े बड़े मंत्रियों को, वजीरों को तनख्वाह नहीं मिल सकती है, इतना पैसे की कमी है पाकिस्तान में। तब पाकिस्तान को ये सबक मिल जाएगा कि हमें तशद्दुद किसी के खिलाफ नहीं करना है, जो कुछ काम करना है कानून के मुताबिक करना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि वो अब तशद्दुद का रास्ता छोड़ दे। कश्मीर पर क्यों नहीं बात करें? मैं तो हमेशा अपने मुल्क के हुक्मरानों से कहता हूँ कि आप जब पाकिस्तानियों से बात करें तो सबसे पहले कश्मीर के बारे में बात कीजिए, और दोनों कश्मीरों के बारे में बात कीजिए। पाकिस्तानियों से पूछिए कि तुमने उस कश्मीर पर कब्जा क्यों कर रखा है, तुम हिंदुस्तान को ब्लेम करते हो, तुम पहले अपने कश्मीर को आज़ाद करो, उसको क्यों दबा रखा है तुमने। हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, ज़रूर करेंगे तुमसे, और कश्मीरियों को पूरा हुकूक देंगे, इधर के कश्मीरियों को, उधर के कश्मीरियों को, कि वो अपना फैसला करें। मैं तो चाहता हूं कि दोनों तरफ के कश्मीर मिल जाएं और वो दोनों दोस्ती का पुल बने, सेतु बने, दोनों मुल्कों को जोड़ने का काम करें। अभी कश्मीर की वजह से एक नकली लड़ाई जबरदस्ती चलती रहती है। मैं तो कश्मीर की आज़ादी का बहुत बड़ा तरफदार हूँ और कश्मीर की आज़ादी का मतलब यह है कि दोनों कश्मीरों की आज़ादी, और इस आज़ादी का मतलब अलगाव नहीं है, उसको पाकिस्तान से अलग नहीं करना है, और जो कश्मीर भारत के साथ है उसको भारत से अलग नहीं करना है, उन दोनों कश्मीरों को जोड़ना है और उसके जोड़ से दोनों मुल्कों को जोड़ना है, भारत और पाकिस्तान को। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों जुड़ जाएं, मिल के काम करें, तो पूरे जनूबी एशिया में वो जबरदस्त इक्तिसादी इंकलाब हो सकता है कि यूरोप हमसे अगले 20 साल में कहीं पीछे छूट जाएगा।
जी जी, बहुत
हमारे पास इतना मालमत्ता है, हमारी खदानों में इतना पैसा है, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग इस कदर मेहनती हैं कि यूरोपियन हमारा मुकाबला कैसे करेंगे। हमारी एक बड़ी फैमिली है, हमको मिलके एक साथ काम करना चाहिए।
जी शुक्रिया वैदक साहब, शुक्रिया। शमसी साहब, जनाब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाज़ात के हल में अमेरिका की सालिसी कितनी काबिल एतमाद हो सकती है?
जी जी, देखिए जी, ये जो सवाल पहले भी आपने उठाया कि इस पे सालिसी उस वक्त होती है जब दोनों फरीक उस पे आमादा हों।
जी,
पाकिस्तान की जानब से तो हमेशा कहा गया है कि कोई भी तीसरा फरीक आके ये मामला हल करवाए, लेकिन आपने देखा है कि भारत की तरफ से हमेशा उसका इनकार किया गया है। जहाँ तक अभी दिल्ली से हमारे मोहतरम बात कर रहे थे, मैं दो तीन बातें यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही सांस में पाकिस्तान को वहां ला खड़ा किया है, कटहरे में ला खड़ा किया है। यकीनन वो एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और उन्होंने वो तमाम मराल जो हैं इस बड़े सगीर के पाकिस्तान बनते, भारत बनते साम्राज्य को यहाँ जाते हुए देखा है उन्होंने। लेकिन मुझे अफसोस, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस वक्त जो है जो पुराने लोग हैं उनको वो नफरतें भूल कर नए सिरे से उनके बीज नहीं बोने चाहिए। आज जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक मसनूई लड़ाई लड़ रहा है, खुदारा ये कौन सी मसनूई लड़ाई है कि हमारे 60,000 शहरी जो हैं, हमारे फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, सिविलियन जो हैं 60,000 अब तक दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं, और हालिया ये जो पेशावर के स्कूल में हुआ है जहां बच्चे शहीद हुए हैं, तो क्या ये मसनूई जंग है? खुदारा हमें समझना चाहिए कि हम वाकयात को, कहानी को, उसको उसके सियाको सबाक से हटकर जब बात करेंगे तो इसके नताइज जो होंगे, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो पाकिस्तान और भारत की जो नौजवान नस्ल है वो इससे क्या अखज़ करेगी। यहां आप एक जो बात उन्होंने की कि पाकिस्तान और भारत को एक बराबरी पे लाने की कोशिश की और पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं है, उसका वजूद नहीं है, ये जो रवैया है चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो यकीनन उसके रकबे और उसकी आबादी के लिहाज से वो छोटा है, और भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उतना उनका दिल नहीं है। पाकिस्तान ने तो अपने महदूद वसाइल से उस वक्त जब मशरकी पाकिस्तान एक साजिश के जरिए हमसे काट दिया गया और मुक्ति बानी और इंडिया ने जिस तरह मुदाखलत की, और उस वक्त हमारे सामने अमेरिका का भी एक जो किरदार है वो भी तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान ने तो अपने वसाइल के तहत जब एटमी कुव्वत वो बना, तो ये भारत के लिए और दुनिया के लिए बड़ी हैरानकुन और बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि पाकिस्तान की क्या ये हैसियत के ये टेक्नोलॉजी उसके पास चली गई। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं यहां मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेहनतकश लोग हैं, बावकार लोग हैं, और उसकी अक्सरियत जो है महज एक 2% जो शराफिया है जो बदकिस्मती से हर मुल्क में होती है उसको जो एक उसका चेहरा नहीं बनाना चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बड़ी आगे बढ़कर खुले दिल के साथ बात की है। आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि यकीनन अमेरिका से जो हमारे तलुकात हैं वो कोई बराबरी की सतह पर नहीं है, यकीनन से दुरुस्त है, ये सच है, ये हकीकत है, लेकिन क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं अमेरिका का रोमांस, अभी आप नए नए अमेरिका के शहर में शिकार हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि सारे खेल के पीछे, इस तालिबान के पीछे, इस दहशतगर्दी के पीछे, बगदाद से लेकर काबुल तक और काबुल से लेकर शाम तक और शाम से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो फिर जब आपको ये हकीकत मालूम है, तो अभी जब जॉन कैरी साहब वहां आए थे तो ये हकीकतें आपने उनके सामने क्यों नहीं रखी? हम क्यों दोहरे तजादात का शिकार हैं कि जब आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी की पुष्ट बनाई अमेरिका है, तालिबान उसके क्रिएट करता है और इसमें तारीखी बातें ये दुरुस्त है, लेकिन अब आज आप अमेरिका को मशवरा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान को मजीद टाइट करे, डू मोर करे। भाई पाकिस्तान अब और मजीद क्या करे? पाकिस्तान ने तो एक आलमी अमन के लिए ये जो एक आग जो है वो अपने शहर तक वो जल रहा है हमारा, हमें किसी से, और आप ये देखें जो
मुसीबत होती
है उसको मुसीबत कहना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अंदराबी साहब। जनाब हमारे पास वक्त कम रह गया, 3 मिनट का वक्त हमारे पास है। पाक हिंद इख्तलाफात में अमेरिका की सालिसी की बात हो रही है, तो कितनी गैर जानिबदार हो सकती है ये सालिसी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इख्तलाफात का बाकी रहना अमेरिका के फायदे में है या इसका दूर हो जाना?
जी देखिए, दो टोक जवाब ये है कि ये गैर जानिबदाराना नहीं होगी, ये इंडिया के हक में होगी जो भी अमेरिका की सालिसी होगी, और इनके दरमियान खिंचाव रहना और टेंशन रहना ये अमेरिका के हक में है। उन्होंने ही कश्मीर का मसला जो है ये होता ही नहीं, कश्मीर जो है जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया और बरसगीर हिंद पाक दो हिस्सों में तकसीम हो गया, कश्मीर तो बहुत ही नेचुरली पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन ये सारा उस वक्त ये जो वहां पर इस्तेमाली हुक्मरान थे बर्तानिया के, उनका किया करता है। ये तो हिस्ट्री है, इस पे कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, और ये इसीलिए है कि इनके दरमियान टेंशन बना रहे। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात पर अच्छी, बहुत ही यानी अपने नजर डालनी चाहिए, और ये सारा अपने जहन से निकालना चाहिए कि अमेरिका किसी भी तरह से उनकी मदद करेगा। अमेरिका का एजेंडा बरसगीर के लिए यह है कि पाकिस्तान इंडिया के माथत एक रियासत रहे। अब वो पाकिस्तान को वही एडवाइज कर रहा है, आज से नहीं पिछले कई सालों से अमेरिका की यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान इंडिया के सबसर्वियंट एक रियासत रहे और अच्छी तरह रहे, लेकिन इंडिया के सबसर्वियंट, ऐसी कोई बात न करे जिससे टेंशन हो। तो लिहाजा ये ऐसी कोई बात न करे जिससे इंडिया का, जिसमें बराबरी का पहलू हो या अपने हुकूक की बात हो। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि बिल्कुल अमेरिका की सालसी जो है वो डेफिनेटली इंडिया के हक में होगी। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ बहुत ऑनेस्ट, यानी मैं इस पे जोर दे रहा हूं, बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाए और बराबरी की सतह पे बनाए। जो रियासतों के दरमियान जिस तरह वो पुराने एक राजा पोरस की बात है कि पोरस को जब शिकस्त हुई तो शिकस्त देने वाले बादशाह ने उसे कहा कि हम आपसे क्या सलूक करेंगे, उसने कहा कि जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो उसी तरह बराबरी की सतह पर पाकिस्तान को इंडिया के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। कश्मीर का मसला एक बरहक मसला है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इंडिया में इंडिया की अगर शिकायत है कि पाकिस्तान वहां कुछ कर रहा है, उन शिकायत को सही मानों में दूर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की जमीन को जो है इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी टेररिस्ट या कोई भी ऐसी चीज हो।
जी जी।
तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ अच्छी एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिल्ड।
बहुत बहुत शुक्रिया अंदराबी साहब। इसी के साथ हम वैदक साहब और शमसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं, तीनों तजिया निगारों के ख्यालात मुलाजा फरमाए। बहरहाल अमरीका काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस नहीं हो सकता है, और जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जॉन कैरी का ये कहना कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की मुश्तरका जंग है, ये भी काबिल गौर नुक्ता है, इसलिए कि जहां भी दुनिया में दहशतगर्दी है वहां किसी न किसी शक्ल में अमेरिका मौजूद है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज़।